एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्ते, आज हम वॉल्टर इसैक्सन की किताब द इनोवेटर्स पर एक थोड़ी गहरी चर्चा करने वाले हैं। मतलब ये सिर्फ गैजेट्स या कोड की कहानी नहीं है।
सही कहा, ये उन इंसानों की कहानी है, उनके जुनून की, उनके सहयोग की, और हाँ कभी कभी उनके टकराव की भी, जिसने हमारी आज की डिजिटल दुनिया बनाई है।
बिल्कुल, और ये समझना जरूरी क्यों है? क्योंकि देखिए, हमारे स्मार्टफोन से लेकर इंटरनेट तक, हर वो चीज जो आज हमारी जिंदगी का हिस्सा है, उसकी जड़ कहीं ना कहीं यही है।
हाँ, और वॉल्टर इसैक्सन मेरे ख्याल से इस कहानी को कहने के लिए बहुत सही व्यक्ति हैं। वो सीएनएन के सीईओ रह चुके हैं, टाइम के संपादक रहे हैं।
और स्टीव जॉब्स, आइंस्टाइन जैसे लोगों की जीवनी भी लिखी है उन्होंने।
बिल्कुल, तो उन्होंने पहले अलग अलग, मतलब एकल प्रतिभाओं पर काफी लिखा,
अच्छा।
लेकिन जब उन्होंने डिजिटल क्रांति को देखा तो उन्हें एक अलग ही पैटर्न दिखा, सहयोग का पैटर्न, टीम्स का, साझेदारियों का।
अच्छा,
ये किताब असल में उसी पैटर्न की खोज है।
हाँ, और ये उस आम सोच को भी तोड़ती है कि कोई एक अकेला जीनियस,
बिल्कुल,
है ना, अचानक से कोई महान आविष्कार कर देता है। ये किताब पूछती है, क्या वाकई ऐसा होता है
जी
या कहानी कुछ और है?
यही यही सबसे बड़ा सवाल है।
हाँ।
डिजिटल क्रांति असल में हुई कैसे? इसैक्सन का तर्क यही है कि ये लोन जीनियस वाली बात नहीं है, ये एक लंबी, धीरे धीरे बड़ी हुई और गहरी सहयोगात्मक प्रक्रिया थी। कई
कहाँ?
पीढ़ियों के लोग इसमें शामिल थे।
तो चलिए इस सफर को शुरू से शुरू करते हैं, और शुरुआत थोड़ी हैरान करने वाली है। हम जा रहे हैं 1840 के दशक में।
हाँ बिल्कुल, कहानी शुरू होती है चार्ल्स बेबेज और एडा लवलेस से। बेबेज एक कमाल के गणितज्ञ और इंजीनियर थे, उन्होंने एनालिटिकल इंजन का डिजाइन बनाया।
वो क्या था, कोई मशीन?
हाँ, एक तरह का मैकेनिकल कंप्यूटर का ब्लूप्रिंट। उसमें आज के कंप्यूटर की कई चीजें थी, जैसे एक मिल जिसे आप प्रोसेसर समझ सकते हैं,
अच्छा।
एक स्टोर यानी मेमोरी, और प्रोग्रामिंग के लिए पंच कार्ड का इस्तेमाल। ये उस जमाने के हिसाब से एक शानदार इंजीनियरिंग सोच थी, भले ही वो मशीन पूरी बन नहीं पाई।
लेकिन यहां कहानी में वो दिलचस्प मोड़ आता है जो इस किताब की जान है। एडा लवलेस,
जी,
जो मशहूर कवि लॉर्ड बायरन की बेटी थी।
वो सिर्फ गणितज्ञ नहीं थी, है ना, उन्होंने बेबेज की मशीन में सिर्फ नंबर जोड़ने घटाने से मतलब कुछ ज्यादा देखा।
बिल्कुल, उन्होंने कल्पना की कि ये मशीनें सिर्फ गणना नहीं करेंगी, ये संगीत बना सकती हैं, कला रच सकती हैं, किसी भी तरह के सिंबल, किसी भी तरह के प्रतीक को प्रोसेस कर सकती हैं।
कमाल है, उन्होंने इसे पोएटिकल साइंस कहा था।
हाँ, पोएटिकल साइंस, कितना अद्भुत विचार है। ये दिखाता है कि कैसे एक दूरदर्शी सोच, एक विजन, इंजीनियरिंग को एक बिल्कुल नई दिशा दे सकती है। और ये विजन और इंजीनियरिंग का मिलना, यही इस किताब की मुख्य थीम है ना?
एकदम सही, यही थीम बार बार उभर कर आती है। इसके बाद कहानी तेजी से आगे बढ़ती है 1930-40 के दशक में। एलन ट्यूरिंग,
हाँ, ट्यूरिंग मशीन।
उन्होंने यूनिवर्सल कंप्यूटिंग मशीन का सैद्धांतिक आधार रखा। ये विचार कि एक मशीन अगर सही प्रोग्रामिंग हो तो कोई भी गणना वाला काम कर सकती है, ये डिजिटल युग का वैचारिक जन्म था।
और फिर आया दूसरा विश्व युद्ध, जिसने इन विचारों को असलियत में बदलने की जरूरत पैदा कर दी।
हाँ, जॉन एटनासॉफ ने शुरुआती इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पर काम किया, और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में जॉन मॉचली और जे प्रेस्पर एकर्ट की टीम ने सेना के लिए ENIAC बनाया।
ENIAC, ये तो बहुत सुना है, पहला प्रोग्रामेबल जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर।
जी, और यहाँ ये बात नोट करने लायक है कि ये सिर्फ दो लोगों का काम नहीं था, दर्जनों इंजीनियर थे, और खास तौर पर 6 महिला कंप्यूटर्स थीं।
कंप्यूटर्स मतलब मशीन?
नहीं, उस समय कंप्यूटर उन लोगों को कहा जाता था जो जटिल गणनाएं हाथ से करते थे, ज्यादातर महिलाएं थीं। तो इन 6 महिलाओं ने ENIAC की पहली प्रोग्रामिंग की, वो पहली प्रोग्रामर बनी।
ये टीम वर्क का कितना बढ़िया उदाहरण है।
वाह, ये तो मुझे पता नहीं था।
तो हार्डवेयर तो आ गया।
हाँ, हार्डवेयर आ गया, लेकिन अब उसे इस्तेमाल कैसे करें, यहीं पर ग्रेस हॉपर का जबरदस्त योगदान आता है।
ग्रेस हॉपर, नेवी एडमिरल और कंप्यूटर साइंटिस्ट।
बिल्कुल, उन्होंने कंपाइलर का आविष्कार किया। आप इसे एक तरह का अनुवादक समझ सकती हैं।
अच्छा, क्या करता था ये?
ये इंसानों की लिखी भाषा, जैसे कोबोल जिसे बनाने में भी उनका बड़ा हाथ था, उसको मशीन के समझने लायक जीरो और वन की भाषा में बदल देता था।
ओ, तो इसने तो कंप्यूटिंग को आम लोगों के ज्यादा करीब ला दिया होगा।
बिल्कुल, बहुत ज्यादा सुलभ बना दिया। और इसी ने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की नींव रखी।
इसके बाद तो चीजों को छोटा करने की दौड़ शुरू हुई होगी।
हाँ बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनिक्स को छोटा, सस्ता और ज्यादा भरोसेमंद बनाने की होड़। 1947 में बेल लैब्स में ट्रांजिस्टर का आविष्कार एक बहुत बड़ी छलांग थी।
वो तीन लोगों की टीम थी ना, शॉकले, बार्डीन और ब्रैटन।
जी, विलियम शॉकले, जॉन बार्डीन और वॉल्टर ब्रैटन। कहते हैं माहौल बड़ा तनाव वाला था, कॉम्पिटिशन बहुत था, लेकिन उसी टकराव और सहयोग से ये क्रांतिकारी आविष्कार निकला। इसने भारी भरकम वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ले ली।
और फिर माइक्रोचिप,
अगला कदम वही था, माइक्रोचिप यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। और मजे की बात यह है कि 1958 में दो लोगों ने लगभग एक ही समय पर अलग अलग जगहों पर इसका आविष्कार कर दिया।
अच्छा, कौन थे वो?
जैक किल्बी टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स में और रॉबर्ट नॉइस फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर में। उन्होंने एक छोटी सी सिलिकॉन चिप पर बहुत सारे ट्रांजिस्टर फिट करने का तरीका ढूंढ निकाला।
इसी से मूर का नियम निकला।
इसीलिए मूर के नियम को रफ्तार दी कि चिप पर ट्रांजिस्टर की संख्या हर कुछ समय में दोगुनी होती जाएगी। और नॉइस ने बाद में इंटेल की सह स्थापना की और सिलिकॉन वैली की वो जो खुली सहयोगी संस्कृति है ना, उसको बनाने में भी मदद की।
अब कहानी पहुंचती है 1970s के दशक में, कंप्यूटर के शौकीन लोग, हॉबिस्ट का जमाना।
हाँ, और स्थापित व्यवस्था को चुनौती देने वाली काउंटर कल्चर का भी। इंटेल का माइक्रोप्रोसेसर आ चुका था, एक पूरी सीपीयू एक चिप पर।
इससे वो किट कंप्यूटर बने, एल्टेयर 8800 जैसे, जिन्हें लोग घर पर खुद बनाते थे।
बिल्कुल, कंप्यूटर क्रांति अब गैराज तक पहुंच गई थी और यहीं से वो दो सबसे मशहूर साझेदारियां निकली।
हाँ हाँ, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट।
जी, एक तरफ थे स्टीव वोजनियाक जो इंजीनियरिंग जीनियस थे, मजे के लिए कंप्यूटर बनाते थे, और स्टीव जॉब्स जिनकी नजर भविष्य पर थी। उन्होंने वोजनिया की इंजीनियरिंग को एक खूबसूरत आसान प्रोडक्ट यानी एप्पल में बदल दिया।
ये कुछ कुछ बैबेज और लवलेस जैसा ही है ना, इंजीनियर और दूरदर्शी।
बिल्कुल, एक मॉडर्न रूप। और दूसरी तरफ थे बिल गेट्स और पॉल एलन,
माइक्रोसॉफ्ट वाले।
हाँ, उन्होंने समझा कि इन नए पर्सनल कंप्यूटरों का असली खेल हार्डवेयर में उतना नहीं जितना सॉफ्टवेयर में होगा। वो हार्वर्ड छोड़कर अल्टेयर के लिए बेसिक इंटरप्रेटर बनाने लगे
और माइक्रोसॉफ्ट शुरू की।
उनका दाव सॉफ्टवेयर पर था
और वो दाव बिल्कुल सही साबित हुआ।
अच्छा, अब जरा इंटरनेट की कहानी पर वापस आते हैं।
वो भी तो साथ साथ चल रही थी।
हाँ बिल्कुल, समानांतर। इसकी जड़ें जाती हैं 1960 के दशक में, J.C.R. लिकलिडर के विचारों तक। वो एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने कंप्यूटरों के एक ग्लोबल नेटवर्क की कल्पना की थी, एक इंटरगैलेक्टिक कंप्यूटर नेटवर्क।
इंटरगैलेक्टिक, क्या नाम है?
हाँ, और जब वो पेंटागन की एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी यानी अर्पा से जुड़े तो उन्होंने इस विजन को सच करने के लिए फंडिंग देनी शुरू की।
इसी से अर्पानेट बना?
जी हाँ, अर्पानेट का जन्म हुआ। ये एक विकेंद्रीकृत नेटवर्क था, मतलब कोई एक सेंट्रल कंट्रोल पॉइंट नहीं था।
जानबूझकर ऐसा बनाया गया था।
हाँ, ताकि अगर कोई हमला हो तो भी नेटवर्क चलता रहे। और ये किसी एक कंपनी का प्रोजेक्ट नहीं था, ये यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स का एक खुला सहयोगी प्रयास था।
विंस सर्फ और बॉब कान जैसे नाम आते हैं यहाँ पे।
बिल्कुल,
TCIP वाले।
बिल्कुल, उन्होंने TCIP प्रोटोकॉल विकसित किए। आप इन्हें इंटरनेट की डाक सेवा के नियम समझ सकती हैं। ये पक्का करते हैं कि डेटा पैकेट सही पते पर पहुंचे, और इसका खुलापन वही इसकी सबसे बड़ी ताकत बना।
लेकिन ये शुरुआतें इंटरनेट आम लोगों के लिए तो नहीं था, है ना? इस्तेमाल करना मुश्किल था।
हाँ हाँ, बहुत मुश्किल था। यहीं पर आते हैं टिम बर्नर्स ली,
वर्ल्ड वाइड वेब वाले।
जी, स्विट्जरलैंड में सर्न लैब में काम करते हुए उन्होंने 1989-90 के आसपास वर्ल्ड वाइड वेब बनाया, ताकि रिसर्चर्स आपस में जानकारी आसानी से शेयर कर सकें। उन्होंने तीन मुख्य चीजें बनाई, URL
यानी वेब एड्रेस,
हाँ,
HTTP
डेटा भेजने का नियम,
और HTML
वेब पेज बनाने की भाषा।
बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने इसे फ्री कर दिया, पेटेंट नहीं कराया।
यही तो, यही उनका सबसे क्रांतिकारी कदम था। सोचिए, अगर उन्होंने ऐसा ना किया होता तो शायद आज वेब इतना खुला और सब तक पहुंचने वाला ना होता। ये खुलेपन की ताकत का एक जबरदस्त उदाहरण है।
वेब तो आ गया, पर उसे देखने के लिए ब्राउजर चाहिए था।
हाँ, एक अच्छा ब्राउजर। मार्क एंड्रीसन और उनकी टीम ने इलिनॉय यूनिवर्सिटी में मोज़ेक ब्राउजर बनाया। ये पहला पॉपुलर ब्राउजर था जिसने टेक्स्ट के साथ इमेज दिखाना आसान किया, क्लिक करने वाला इंटरफेस दिया।
इसने इंटरनेट को आम लोगों के लिए खोल दिया।
एकदम, और फिर .com बूम की शुरुआत हुई।
और फिर इस वेब की ताकत का इस्तेमाल करने वाले आए, जैसे गूगल।
हाँ, लैरी पेज और सर्गे ब्रिन। गूगल सर्च, उनका पेज रैंक एल्गोरिदम भी तो सहयोग के सिद्धांत पर ही आधारित था।
कैसे?
वो किसी पेज की अहमियत इस बात से तय करता था कि कितने दूसरे पेज उससे लिंक करते हैं, मतलब वेब की सामूहिक बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल।
अच्छा, और विकिपीडिया?
इमीमेल्स और लैरी सैंगर का विकिपीडिया, एक ऐसा ज्ञानकोश जिसे कोई भी एडिट कर सकता है, इस विश्वास पर कि सब मिलकर ज्ञान का एक भरोसेमंद सोर्स बना सकते हैं। ये सब इस एक्शन के मूल तर्क को ही और मजबूत करते हैं कि इनोवेशन एक सहयोगी प्रक्रिया है।
तो इस पूरी कहानी से नवाचार यानी इनोवेशन के बारे में क्या बड़ी बातें निकल कर आती हैं?
देखिए, पहली और शायद सबसे अहम बात, सहयोग ही कुंजी है। अकेला जीनियस वाली कहानी सुनने में अच्छी लगती है, पर ज्यादातर वो एक मिथक है। बैबेज और लवलेस से लेकर जॉब्स और वोजनियाक तक, बेल लैब से लेकर आर्पेनेट कम्युनिटी तक, हर बड़ी सफलता टीमों और साझेदारियों का ही नतीजा थी।
दूसरी बात जो मुझे हमेशा बहुत दिलचस्प लगती है, दूरदर्शी और इंजीनियर दोनों का संगम जरूरी है। सिर्फ बड़े सपने देखने वाले काफी नहीं, उन्हें हकीकत बनाने वाले भी चाहिए।
बिल्कुल, लवलेस, लिकलीडर, जॉब्स जैसे लोगों ने भविष्य देखा, तो बैबेज, वॉजनियाक, ट्रांजिस्टर टीम जैसे लोगों ने उसे बनाया। दोनों जरूरी हैं।
तीसरा क्या कहेंगे?
तीसरा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर साथ साथ चलते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं। बेहतर चिप्स ने बेहतर सॉफ्टवेयर को मुमकिन बनाया और नए सॉफ्टवेयर ने बेहतर चिप्स की मांग पैदा की। ये एक साइकिल है।
हाँ, ये तो है।
चौथा, खुलेपन और विकेंद्रीकरण की शक्ति। इंटरनेट और वेब का खुला आर्किटेक्चर देखिए, उसने AOL जैसी बंद सिस्टम्स को पीछे छोड़ दिया। खुलापन अक्सर ज्यादा तेजी से विकास लाता है।
और वो ट्रिपल हेलिक्स वाली बात भी है।
हाँ, नवाचार को ट्रिपल हेलिक्स से ताकत मिलती है। सरकार जैसे ARP की रिसर्च फंडिंग, शिक्षा, यूनिवर्सिटीज में खुली रिसर्च और निजी क्षेत्र, प्रोडक्ट बनाना, बाजार तक पहुंचाना, इन तीनों का तालमेल बहुत अहम है।
और आखिरी बात,
और आखिर में ये समझना कि नवाचार एक विकासवादी प्रक्रिया है, कोई एक धमाका नहीं। हर नया विचार पिछले विचारों पर खड़ा होता है, ये एक रिले रेस की तरह है।
जैसे वो बुश से एंगलबार्ट, फिर ज़ेरॉक्स स्पार्क्स, फिर जॉब्स वाली कड़ी।
बिल्कुल, हर इनोवेटर पिछले वाले से बटन लेकर दौड़ को आगे बढ़ाता है।
इस लंबी यात्रा में कुछ पल तो ऐसे रहे होंगे जिन्होंने सब कुछ बदल दिया, वो टर्निंग पॉइंट्स। अगर तीन सबसे अहम चुनने हो तो कौन से चुनेंगे आप?
मुश्किल सवाल है, लेकिन पहला मोड़ मेरे हिसाब से वैचारिक था, एडा लवलेस की पोएटिकल साइंस की दृष्टि।
अच्छा,
क्यों? क्योंकि जब उन्होंने ये कल्पना की कि कंप्यूटर सिर्फ नंबर नहीं बल्कि सिंबल, शब्द, संगीत, कला, कुछ भी प्रोसेस कर सकते हैं, तो उन्होंने कंप्यूटिंग की संभावनाओं का दायरा ही असीमित कर दिया। मशीन सिर्फ कैलकुलेटर नहीं रही, वो एक यूनिवर्सल टूल बन गई। ये एक वैचारिक छलांग थी।
ये बात तो सही है। दूसरा मोड़ कौन सा था?
दूसरा मोड़ निश्चित रूप से तकनीकी था, जिसने सबको छोटा और ताकतवर बनाया, ट्रांजिस्टर और फिर माइक्रोचिप का आविष्कार।
हाँ, ये तो बहुत बड़ा बदलाव था।
बिल्कुल, बेल लैब्स की वो टीम और फिर किल्बी और नॉइस की वो रेस, इसने इलेक्ट्रॉनिक्स को पूरी तरह बदल दिया। मूर का नियम शुरू हुआ, पर्सनल कंप्यूटर, स्मार्टफोन, आज की दुनिया इसके बिना सोची भी नहीं जा सकती।
और तीसरा मोड़?
तीसरा मोड़ जुड़ाव का था, आर्पानेट, इंटरनेट प्रोटोकॉल, TCP/IP और फिर वर्ल्ड वाइड वेब का बनना,
यानी कनेक्टिविटी।
हाँ, लिकलेटर का सपना आर्पानेट से शुरू हुआ, TCP/IP ने उसे एक स्टैंडर्ड ढांचा दिया और फिर टिम बर्नर्स-ली ने वेब बनाकर और उसे मुफ्त करके उसे आम लोगों तक पहुंचा दिया।
उनका वेब को खुला रखने का फैसला।
हाँ, वो फैसला शायद इतिहास के सबसे असरदार फैसलों में से एक है। इसने ग्लोबल कनेक्टिविटी और जानकारी साझा करने की क्रांति ला दी।
ये सिर्फ तकनीक की कहानी नहीं लगती, इसमें इंसानों के लिए भी गहरे सबक छिपे हैं। आज के दौर में हम इससे क्या सीख सकते हैं?
बिल्कुल, बहुत कुछ सीख सकते हैं। पहली बात तो टीम वर्क की असली ताकत। महान चीजें अकेले शायद ही कभी बनती हैं, साझेदारियां भले ही उनमें तनाव हो बहुत जरूरी हैं।
दूसरी बात?
दूसरा, विविधता का महत्व। अलग अलग तरह के स्किल्स, अलग अलग सोचने के तरीके, इंजीनियर, डिजाइनर, विजनरी, मैनेजर, जब ये सब साथ आते हैं तभी कुछ बड़ा होता है।
तीसरा सबक क्या होगा?
तीसरा, दूसरों के काम पर निर्माण करने का नजरिया। प्रगति एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये जरूरी है कि हम दूसरों के योगदान को पहचानें और उस पर आगे बढ़ें, ना कि हर बार पहिया नए सिरे से बनाने की कोशिश करें।
और वो खुलेपन वाला सबक भी बहुत महत्वपूर्ण है।
हाँ, खुलेपन बनाम गोपनीयता। अक्सर जानकारी साझा करने से ज्यादा तेजी से प्रगति होती है। इंटरनेट और ओपन सोर्स इसके उदाहरण हैं। और आखिर में दृढ़ता। ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। पीढ़ियों की मेहनत लगी, असफलताएं मिली, लोगों ने फिर कोशिश की। ये सबक तो किसी भी फील्ड में काम आते हैं।
बिल्कुल। तो अगर इस पूरी चर्चा को, इस पूरी किताब के सार को तीन मुख्य बातों में समेटना हो तो वो क्या होंगी?
ठीक है, पहली होगी एक भावनात्मक अंतर्दृष्टि। नवाचार जो है वो असल में मानवीय रिश्तों और भावनाओं से चलता है। दोस्ती जैसे जॉब्स और वोजनियाक के, प्रतिद्वंदिता, जैसे ट्रांजिस्टर टीम में या किल्बी और नॉइस के बीच, जुनून कुछ नया बनाने की, दुनिया से जुड़ने की वो गहरी इच्छा, ये सब रचनात्मकता के असली इंजन हैं। ये मूल रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है।
ये बहुत गहरी बात है। दूसरी अंतर्दृष्टि?
दूसरी एक बौद्धिक अंतर्दृष्टि। सच्ची और टिकाऊ नवीनता वो लगभग हमेशा सहयोगात्मक होती है। वो पिछले काम पर धीरे धीरे बनती है और अक्सर अलग अलग फील्ड्स या आइडियाज के मिलने से पैदा होती है। इसमें भविष्य की कल्पना करने वाली दृष्टि, विजन भी चाहिए और उसे हकीकत बनाने वाला इंजीनियरिंग कौशल, एग्जीक्यूशन भी, दोनों बराबर जरूरी हैं। वो अकेला जीनियस वाला विचार, वो आकर्षक तो है पर अधूरा है।
सही कहा। और तीसरी एक व्यावहारिक सीख?
नहा, तीसरी एक सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि। यह हम सबके लिए एक प्रैक्टिकल सबक है। अपने काम में, अपनी जिंदगी में सहयोग को बढ़ावा दें। अलग अलग नजरिया और हुनर वाले लोगों के साथ मिलकर काम करें। दूसरों के आइडियाज पर कुछ बनाने और अपने आइडियाज शेयर करने को तैयार रहें। क्या हो अगर, यानी विजन, और कैसे करें, यानी इंजीनियरिंग, इन दोनों सवालों को महत्व दें। यही मिलकर कुछ नया और सार्थक बनाते हैं।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकर्ट फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।